पास गया था जिसने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में बताया था, तो उन ऋषि ने यही कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी को किसी ने खाया नहीं है, जीवित है परंतु वो रसातल में है और उसका चरित्र बड़ा पवित्र है। तो पूछा महाराज पताल में कौन ले गया, और दूसरों के हाथ में जाने पर भी वो परम पवित्र कैसे रह गई, ये सब आप मुझे यथार्थ रूप से बताओ। तब इस ऋषि ने कहा, कल तक तो इतनी कथा थी, आज से ऋषि ने कहा पाताल में नागराज कपूत एक विख्यात पुरुष है। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा था। कपूत ने उससे सारा हालचाल पूछा और वे उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपूत के नंदा नाम की एक पुत्री थी और मनोरमा नाम की एक स्त्री भी थी। नंदा ने जब आपकी पत्नी जिसका नाम बहुला था उसको देखकर सोचा, ओहो पिताजी किसको ले आए, ये तो मेरी मां की सौत बनने वाली है। तो यूं विचार करके वो अपने घर में ले गई और घर में ले जाकर महल के अंदर छिपा दिया। कपूत ने जब नंदा से बहुला को मांगा कि भाई वो मैं लाया था वो लाओ, तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने कहा क्यों क्या हो गई, तो गूंगी है, तब भी उत्तर नहीं दिया। तो और ज्यादा क्रोध आया पिता को, जा तो गूंगी हो जाए। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है और बताती है नहीं और बता सकती नहीं, ये शाप तो तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत हितकारक हो गया, क्योंकि नंदा के बिना वो कहां है इसको कोई जानता भी नहीं था। तो नागराज उसको ले गए हैं और वो उसकी कन्या के पास वो छिपी हुई है, इसलिए वो अपने चरित्र से एकदम शुद्ध है। राजा बोले हे महामुने, मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का बर्ताव करती, इसका कारण क्या है? मैं इतना चाहता हूं फिर भी वो मेरे से ऐसा बर्ताव क्यों करती है? ऋषि ने उत्तर दिया कि देखो जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है उस समय सब प्रकार के मांगलिक नक्षत्रों को सबको देखकर करना चाहिए था। तुम्हारा जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था उस समय सूर्य मंगल और शनिश्चर के तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। ऐसा जब मुहूर्त होता है तो उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी जो परस्पर में शत्रु भाव रखने वाले हैं उसके अनुकूल थे और तुम्हारे वो बड़े प्रतिकूल थे, इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का कष्ट सहन करना पड़ा। ध्यान रखो, प्रत्येक संस्कार जिसमें विवाह बड़ा मुख्य होता है इसको मुहूर्त आदि का ठीक विचार करके करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब हो गया सो तो हो गया, अब तुम जाओ पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। महर्षि के यूं कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और नगर में लौट आए। वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बड़ा प्रसन्न था। राजा ने प्रणाम किया, रथ पर आरूढ़ हो गए, रवाना हो गए और वहां अपने नगर में आए तो ब्राह्मण को देखा और उसकी पत्नी उसके साथ थी शीलवती, और ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, इससे मैं कृतार्थ हो गया। राजा बोले कि हे ब्राह्मण, आप तो अपने धर्म का पालन के कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ गया क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी मिल गई, मेरी पत्नी घर में ही नहीं है, मैं क्या करूं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपकी पत्नी जीवित तो है ना? हाँ जीवित है। और पवित्रता से है ना? कि बिल्कुल पवित्रता से है। तो फिर आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हो? कोई भी धर्म क्या पत्नी के बिना पूरा होगा? पत्नी का तिरस्कार, पत्नी का त्याग अपने आप में एक बड़ा पाप माना जाता है, क्यों कमाते हो? राजा बोले, ब्राह्मण मेरे को डर लगता है, मैं उससे प्रेम तो बहुत करता हूं और यदि वो जहां भी है मैं ले भी आऊं, परंतु डर इस बात का लगता है कि वो सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, मेरे से बहुत झगड़ती रहती है। यदि वो यहां आ जाएगी तो उससे मुझे बहुत दुख ही दुख मिलेगा, सुख तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखती नहीं। कोई आपके पास ऐसा मंत्र है क्या कि जिसके जाप करने से वो मेरे अधीन हो जाए? ब्राह्मण ने कहा, राजन आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा, अतः मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं उस यज्ञ का नाम मित्र निंदा नामक यज्ञ है। मैं आरंभ करता हूं। जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर में प्रेम नहीं होता है उनमें मित्र निंदा प्रेम उत्पन्न करती है, इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसी का अनुष्ठान करूंगा। ब्राह्मण के यूं कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठी करवा दी और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्र विंदा यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव उत्पन्न हो गया है, तब उसने कहा, महाराज अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ आप रहिए, श्रद्धा पूर्वक आप यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। राजा ने पूछा, क्या मेरी स्त्री में प्रेम के आपकी स्त्री में प्रेम हो गया है, माने उसके अंदर आपके प्रति प्रेम पैदा हो गया। ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस राजा ने उस महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर को याद किया। निशाचर को याद करते ही वो राक्षस राजा के पास आया। वही राक्षस था जो पाप भी खाता है पुण्य भी खाता है, मारता नहीं किसी को। वो राजा के पास आया और बड़े नम्रता से कहने लगा, महाराज आज बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे याद किया। आपके याद करने से तो मेरा गौरव बढ़ गया, क्या आज्ञा है? तब राजा ने विस्तार पूर्वक अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे पताल के अंदर नागराज कपूत के वहां मेरी पत्नी है और वो वहां नंदा के वहां पर है। सब समाचार सुना दिया। वह राक्षस पाताल में जाकर महल में चला गया और नंदा के वहां छिपाई हुई राजा की पत्नी को लेकर के आ गया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ अपने पति को देखा रानी ने, और बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार कहा, हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। पिछली किसी भी प्रकार की मेरी अवहेलना को आप क्षमा कर दीजिए। मुझे मालूम नहीं था आपसे वियुक्त होकर मैं बहुत कष्ट पाई। राजा ने कहा, प्रिय अब जो हो गया सो तो हो गया, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मैं तो वैसे ही प्रसन्न था। रानी बोली, महाराज क्या आप मेरे पर प्रसन्न हैं? राजा ने, क्या आपको संदेह है मैं प्रसन्न हूं कि नहीं, इस विषय में संदेह है? मेरे वचनों पर विश्वास तो करो। तो महाराज मैं आपसे एक याचना करती हूं, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। राजा ने कहा, प्रिय तुम्हें जो कुछ भी अभीष्ट हो, जो तुम चाहती हो, निसंकोच होकर कहो। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई दुर्लभ है? मैं तुम्हारे अधीन हूं, बताओ तुम क्या चाहती हो। रानी बोली, नाथ मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को एक साप दे दिया था जिससे वो गूंगी हो गई। यद्यपि उसके गूंगी होने से मुझे बहुत लाभ हुआ और मैं पवित्र रह गई, परंतु मेरे पीछे वो गूंगी हुई है। यदि आप मेरे प्रेम बस उसके संकट का निवारण कर सके तो उसके गूंगेपन को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं एक नंदा का बहुत बड़ा ऋण समाप्त मानूंगी, मेरे पर उसका ऋण बहुत है। वो इतना अच्छा उसने मेरे लिए व्यवहार किया है, तो आप यदि उसको उसका गूंगापन मिटा देंगे तो मेरे सब काम सिद्ध हो गए। तब राजा ने उसी ब्राह्मण को बुलाया और कहा, ब्राह्मण अब उसके गूंगेपन को दूर करने के लिए क्या ऐसा उपाय करोगे उसका गूंगापन दूर हो जाए। ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैं आपके कहने से सारस्वती इष्टि करूंगा, माने सरस्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, जिससे आपकी ये महारानी आपकी सखी को वाक शक्ति की वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर उसके ऋण से उऋण हो जाए। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है। तदनंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सारस्वती इष्टि प्रारंभ की, इतना लगन से अनुष्ठान किया और उसकी मूकता को माने गूंगेपन को दूर करने के लिए सारस्वत सूक्तों का जाप किया एकाग्र चित्त से, तो वो नाग कन्या बोलने लग गई। उन दिनों की बात है जब गर्ग मुनि पाताल में रहा करते थे, उन्होंने नंदा को बताया तुम्हारी सखी बहुला के पति ने यह अत्यंत दुष्कर उपकार किया है और देखो आज तुम्हारा गूंगापन दूर हो गया है। ये बात सुनकर के शीघ्र गामिनी नंदा पाताल से निकलकर सीधे राजा के नगर में आ गई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर बहुत कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। राजा को भी बार बार प्रशंसा करके आसन पर बैठाकर मधुर वाणी में बोली, हे वीरवर, आपने जो इस समय मेरा उपकार किया है इसको मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती हूं। मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत बड़ा स्थान बन गया है। अब मैं आपको जो कहती हूं उसको आप सावधानी से सुनो। राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र पैदा होगा, सारी पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा, वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता होगा, धर्मपरायण होगा, बुद्धिमान होगा और अपने मनवंतर का वो स्वामी बनेगा। राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देकर वो नागराज की कन्या नंदा अपनी सखी को फिर हृदय से लगाकर पाताल लोक को चली गई। तदनंतर रानी के साथ रहते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए और फिर बहुला के यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के चांद के समान कांतिमान था। उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजाओं को बड़ा आनंद मिला और सर्वत्र देवता आदि प्रसन्न होकर अनेक प्रकार से राजा को आशीर्वाद देने लगे। मुनियों ने कहा यह राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए यह औत्तम नाम से विख्यात होगा। औत्तम क्यों? उत्तम तो वो खुद ही रह गया, राजा का नाम उत्तम था, वो नाम तो कैसे रखे, तो औत्तम कर दिया, उत्तमस्यायम औत्तम है। तो राजा का पुत्र औत्तम यह एक मनु हुआ। उसका प्रभाव बड़ा विचित्र था, जो राजा उत्तम के उपाख्यान और औत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन जो व्यक्ति राजा उत्तम के उपाख्यान और औत्तम के जन्म की कथा सुनता है उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता है। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाले का कभी प्रिय पत्नी पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता है। औत्तम मन्वंतर तीसरा कहा जाता है। उसमें पांच देवते को जहां मन्वंतर होता है उसमें पांच देवता रहते हैं, सात ऋषि रहते हैं, ऐसे एक इंद्र होता है। तो वो बहुत विलक्षण था। आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षरों से सुशोभित एक गाथा कहा करते हैं। सुशांतिर देवराट कांत है सुशांति संप्रयच्छति सहित शिव सत्यादैस्तथैव वशवर्तिभिः। औत्तम मनु के अज परशुचि और दिव्य तीन पुत्र वे देवताओं के समान बड़े बलशाली थे और तीसरे मन्वंतर में वशिष्ठ आदि सप्तर्षि थे। इस प्रकार तीसरे मन्वंतर का वर्णन हुआ। अब चौथे मनु के विषय में वर्णन किया जाता है। वो तामस मनु का जन्म है। बस हो गया। सारांश यह है कि हमारे यज्ञ आदि में बड़ी उत्तम शक्तियां हैं तथा विवाह आदि को बिल्कुल शास्त्र के नियम के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो किस प्रकार से उत्तम राजा को कष्ट हुआ, ऐसे कष्ट उठाना पड़ सकता है। बात इतनी।